हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आथ्या वहाँ से गायब हो चुकी थी। अमन का गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था। उसने दोनों अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था और जल्दी ही अमन अपने सामने की ओर देखते हुए बोलने लगा था। बहुत शौक है ना तुझे अपने जिन महाराज से छुपम छुपाई खेलने का। अब देखो तुम्हारा जिन महाराज तुम्हारा क्या हाल करता है। ये सोचते हुए अमन जल्दी ही खतरनाक प्लान तैयार करने लगा था। वेल, पहले तो अमन जल्दी से गायब होकर सोनल परी के ठीक पीछे आ गया था और जैसे काव्या ने अपने पीछे अमन को देखा वो हैरान हो गई और कहने लगी थी, क्या हुआ अमन सर, खूनी का कुछ पता चला? तभी अमन ने जल्दी से काव्या से कहा था, मिस काव्या, मुझे लगता है तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। माफ़ी चाहता हूँ कि इतनी रात को मैं तुम्हें घर जाने के लिए कह रहा हूँ। कायदे में तो मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए जाना चाहिए, लेकिन मैं एक आदमी को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाएगा और इस खूनी का कहीं कुछ पता नहीं लग पाया है। मुझे लगता है मुझे पुलिस की ही हेल्प लेनी होगी। अमन ने जानबूझकर काव्या को वहाँ से भेजने के लिए काव्या से झूठ कहा था, जबकि उसे तीसरे जिन तक जाने का रास्ता मिल चुका था। तो जैसे ही काव्या ने अमन का ये झूठ सुना वो मुस्कुराने लगी थी, कहने लगी थी, ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, आप भी जाकर आराम कर लीजिए। ऐसा कहकर काव्या जल्दी ही वहाँ से निकल चुकी थी। वो अच्छी तरह से जानती थी अमन अब क्या करने वाला था, लेकिन काव्या गायब होकर ये देखना चाहती थी कि क्या अमन उस जिन के करीब पहुँच पाएगा या नहीं। अमन का अपनी नज़रों में काव्या को भेजने के बाद अमन जल्दी ही उस जगह पर पहुँच चुका था जिस जगह से उसने आध्या को गायब होते हुए देखा था। अमन ने वहां खड़े होकर आध्या की खुशबू को महसूस करना शुरू कर दिया था और जल्दी ही अमन कुछ अपने मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस जगह पर पहुंच चुका था जिस जगह पर आध्या की खुशबू आना बंद हो गई थी। वहां पहुंचकर अमन ने अपने आसपास अच्छी तरह से देखा था। वो शहर का तो कोई इलाका नहीं था, ये बात तो सच थी, क्योंकि वो इलाका बहुत दूर था। तब अमन को याद आया था कि ये खंडहर तो कोई और नहीं बल्कि ये उसकी वो कंस्ट्रक्शन साइट थी जो एक बार अमन ने शुरू की थी, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाया था, उतना ही उसने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। और वक्त रहते अमन आगे बढ़ता चला गया था। इतनी पुरानी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर अमन को काफ़ी अजीब लगा था। कितने दिनों से उसके साइट पर ऐसा गुनाह होता हुआ आया था और उसके बारे में उसे कानो कान कोई खबर नहीं थी। अमन ने देखा कि वहां पर कितने ही सारे कपड़े एक तरफ पड़े हुए थे जिन पर कितना है सारा खून लगा हुआ था। अमन काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो ये तो समझ चुका था कि आध्या ज़रूर यहीं कहीं होगी, तो इसीलिए अमन ने एक ही जगह खड़े होकर अच्छी तरह से सारी तरफ देखना शुरू कर दिया था और कंस्ट्रक्शन साइट के एक दूसरी तरफ अपार्टमेंट में उसे किसी के होने का एहसास हुआ था। अमन अच्छी तरह से जानता था अगर वो तीसरा जिन उसका यहाँ मौजूद है तो वो उसकी प्रेजेंस को महसूस कर लेगा और हो सकता है कि या तो वो उसे छोड़कर भाग जाए या फिर कहीं ना कहीं छुप जाए, क्योंकि अमन पर हमला करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए अब अमन ने देरी ना करते हुए जल्दी ही वो सीधा उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर उसे किसी के होने का एहसास हुआ था। और जैसे ही वो वहां गया तो उसके होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। उसने देखा कि आध्या को बिना कपड़ों के एकदम नग्न अवस्था में एक बेड पर लिटाया गया था और वो कमरा कितनी ही सारी आधुनिक चीज़ों से भरा पड़ा था। वहां पर हर तरह का ऐशो आराम का सामान मौजूद था और आध्या के ठीक बराबर में एक लंबे बाल आगे फैलाए हुए जिन बैठा हुआ था जो कि आध्या के मग्न बदन को बुरी तरह से घूर रहा था और फिर उसे बड़ी ही बुरी तरह से स्मेल करने लगा था। तब अमन को इस बात का एहसास हो गया था कि शायद आध्या के देखने की वजह से उस जिन महाराज के वहां होने का एहसास नहीं हुआ था। जैसे ही अमन ने देखा तभी अमन ने उसकी ओर देखते हुए कहा था, ये क्या कर रहे हो तुम? जैसे ही उस खबीस जिन को अमन की आवाज़ सुनाई दी थी, अमन को उसने अपने सामने देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ था और फिर वो मुस्कुराते हुए जिन महाराज की ओर देखकर कहने लगा था, जिन महाराज, सबसे पहले तो आप मेरा सलाम कबूल कीजिए और अगर आप अब यहाँ आ ही गए तो लीजिए और दावत का लुत्फ उठाइए। जैसे ही अमन ने यह सुना वो हैरान हो गया था और अपने उस पागल जिन की ओर देखकर कहने लगा था, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो और तुम इस मासूम लड़की के साथ क्या कर रहे हो? ऐसा कहते हुए अमन ने एक चादर से आध्या को पूरी तरह से कवर कर दिया था और जैसे ही अमन ने ये क्या किया वो तीसरा जिन अमन को गुस्से से घूरने लगा था। तब अमन को उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन दिखाई देने लगा था और वो समझ चुका था कि इस वक्त ये जिन अपने होशो हवास खो बैठा है। और जिस तरह से वो आध्या के नग्न बदन को देख रहा था, तब उसकी आंखों में आध्या के लिए हवस देखी थी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा कि आइए और खाने का लुत्फ उठाइए, तो अमन समझ चुका था कि वो किस बारे में बात कर रहा था, क्योंकि जो डेड बॉडी गायब मिलती थी उनके प्राइवेट पार्ट्स गायब होते थे। तो इसका मतलब ये तीसरा जिन खूबसूरत लड़कियों को अगवा करके उन्हें बेहोश कर दिया करता था और उनके जिंदा रहते ही उनके प्राइवेट पार्ट्स को खाया करता था अपने नुकीले दांतों के साथ, क्योंकि उसके दांत किसी भी ऑपरेशन करने वाले चाकू के धार से काफी तेज हुआ करते थे। तब अमन को अब सारा कुछ समझ में आ गया था और अमन के गुस्से का मारे बुरा हाल हो गया था। अमन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जिन इस तरह से इंसानों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, जबकि वो एक जिन महाराज था। वेल, तभी अमन गुस्से से उस तीसरे जिन को गुस्से से घूरने लगा था और जल्दी ही उसने उस तीसरे जिन की गर्दन को पकड़ने लगा था। लेकिन उसे उस जिन के चेहरे पर मरने का भी खौफ दिखाई नहीं दे रहा था और वो अमन की ओर देखकर कहने लगा था, क्या हुआ है जिन महाराज, तुम इस तरह से मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? मैंने तो तुम्हें इतनी खूबसूरत दावत का लुत्फ उठाने का मौका दिया है। आओ मेरे साथ, इस आज के शिकार की दावत का लुत्फ उठा लो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, आखिरकार तुम मेरे जिन महाराज हो। जैसे ही उस जिन ने ये कहा, अमन को उस जिन से घिनाने लगी थी और जल्दी ही अमन ने उस पर कितने ही सारे लात घुसे की बरसात कर दी थी। हालांकि अमन बड़े ही सोच विचार कर जिन्नों की सजा तय किया करता था, लेकिन इस बार उसका पारा बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका था। अपने जिन की इतनी बुरी हरकत देखने के बाद उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके रहते इस तरह से उसके जिन इस तरह की बदतमीजी कर रहे होंगे। अमन को उस वक्त उस जिन की जगह खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी अमन ने उस जिन की ओर देखते हुए कहा था, क्या तुमने कोई गलती, जो गलती किया, क्या तुम्हें उसका इतना भी पछतावा नहीं है? क्योंकि अमन को लगा था कि जब वो तीसरा जिन महाराज को अपने सामने देखेगा तो अपनी गलती मान लेगा और उससे रहम की भीख मांगेगा और हो सकता है कि अमन उसके किए के मुताबिक कम सजा देगा। लेकिन यहाँ तो उस खबीज जिन के चेहरे पर किसी भी तरह की कोई पछतावा था ही नहीं।
तभी जैसे ही अमन ने उस जिन्न का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की, तो वो जोरों से हंसने लगा था और कहने लगा था, शायद आप भूल रही हैं जिन्न महाराज, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मैं इस तरह से आपके मारे जाने पर नहीं मर सकता हूँ। अगर आप मेरी जान लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे वरदान को हटाना होगा, और आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर एक बार किसी जिन्न का कोई वरदान दिया जाए तो उस वरदान से उसे कोई भी नहीं हटा सकता है। तभी जिन्न महाराज अमन ने उस जिन्न की आंखों में देखकर सोचना शुरू कर दिया था कि आखिरकार इसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला कैसे, और जल्दी ही उसकी आंखों के सामने ये जिन्न एक बड़ा ही कड़ा तप करता हुआ दिखाई देने लगा था। इसने बर्फीली पहाड़ियों में बैठकर कड़ा तप किया था, जिसकी बदौलत से इसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, वो भी सीधा परमेश्वर से। अब जाकर अमन को एहसास हुआ था कि परमेश्वर जिन्न महाराज को इन जिन्नों को ढूंढने के लिए क्यों कह रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर खुद इस जिन्न की जान नहीं ले सकते थे। अब अमन को सब कुछ समझ में आ गया था, इसीलिए अचानक अमन ने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देखने के बाद अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना तिलस्मी पत्थर बाहर निकाल लिया था। भले ही उस जिन्न की जान नहीं ली जा सकती थी, लेकिन उसे ऐसे अंधेरे गुमनामी दुनिया में कैद किया जा सकता था जहाँ से उसका बच पाना भी उसके लिए नामुमकिन था। जैसे ही अमन ने तिलस्मी पत्थर निकाला, अब वो जिन्न डर के मारे कांपने लगा था। वो समझ चुका था कि अमन क्या करने की कोशिश कर रहा था, और जल्दी ही उसने बुरी तरह से रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था और कहना शुरू कर दिया था, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की आग को बुझाया है। मुझे कुमारी लड़कियों के जिस्म के नाजुक हिस्सों को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है और उन्हीं से मेरा पेट भरा करता है, और इसीलिए हर महीने में एक बार मैं किसी न किसी लड़की के जिस्म के हिस्से को खाया करता था, और वो भी उनका जिंदा रहते। जब वो तड़पती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, तब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। जैसे ही अमन ने उसकी इस तरह की बातें सुनी, अब तो उसे उस पर और भी गुस्सा आ रहा था। तब अमन ने खुद को थोड़ा सा शांत किया था। वो अच्छी तरह से जानता था वो इस तरह से गुस्से में आकर किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकता था, और तभी उसने अमन में बड़ी ही शांति से उसकी ओर देखते हुए कहा था, आखिरकार तुम्हारे दिमाग में ये घटिया आइडिया आया कहाँ से? जैसे ही अमन ने उसे ये कहा, वो जिन्न अमन की ओर देखते हुए कहने लगा था, आपके साथ जादुई बावर्ची ने मुझे ये आइडिया दिया था। क्या 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 क्या? जैसे ही अमन ने ये सुना, वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और उसे अब समझ में आ गया था जिन सात जादुई बावर्ची ने पूरी जिन्नातों की दावत का खाना बनाया था, और उन सात जादुई बावर्ची को नॉर्मल इंसानी जिंदगी जीने के लिए अमन ने कुछ सालों तक दुनिया के बीच में रहने का वरदान दिया था। तो उन जादुई बावर्ची ने ही इंसानी औरत के जिस्म को खाने का इस जिन्न को आइडिया दिया था। अब तो अमन के पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी थी और अब उसे लगने लगा था कि उसने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे इस तरह से उन बौनों को वरदान नहीं देना चाहिए था। अब अमन ने सोच लिया था कि जल्द से तो वो अपने सभी सात बावर्ची को खोज निकालेगा और उन्हें सजा देगा। लेकिन उससे पहले उसने जल्दी ही अपने कड़े मंत्र का प्रयोग करते हुए तिलस्मी पत्थर को उस जिन्न के माथे के बीचों बीच लगा दिया था, जिससे उस जिन्न का शरीर इस तरह से जलने लगा था मानो कि उसे आग के भट्टी में झोंक दिया गया हो। और देखते ही देखते वो जिन्न वहाँ से गायब हो चुका था और हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी दुनिया में कैद हो गया था। जब तक जिन्न महाराज नहीं जाएंगे वो वहाँ से वापस नहीं आने वाला था। और जैसे ही अमन ने उस जिन्न को खत्म किया, तब अमन का ध्यान आध्या की ओर गया था। करने जल्दी ही अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए चादर के ऊपर से ही आध्या को कपड़े पहना दिए थे और उसके सर पर हाथ रखकर पर जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए आध्या के मन से इस तीसरे जिन्न की बुरी यादों को मिटा दिया था और उसे सीधा उसके घर में उसके बेड पर ले जाकर सुला दिया था। और जैसे ही अमन ने सारा काम कंप्लीट किया, अचानक से अमन के ऊपर कुछ रंग बिरंगे फूलों की बरसात होने लगी थी, जो कि इस बात का सबूत था कि अमन ने अपने जिन्न महाराज होने का फर्ज बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया था। और तभी अचानक उसके दादा महाराज की आवाज़ वहां गूंजी थी। उसके दादा महाराज अमन को कह रहे थे, शाबाश बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अब अपनी पत्नी अपने परिवार के साथ साथ पूरे जिन्नातों का ध्यान रख सकते हो और तुम अपने सभी जिन्नों पर भी इसी तरह से नज़र रखोगे और किसी को भी कुछ गलत नहीं करने दोगे। तभी अमन ने सबसे पहले अपने दादा महाराज को गले से लगा लिया था, क्योंकि उसके दादा महाराज जब से कैद हुए थे अमन को ऐसा लगने लगा था मानो कि वो अनाथ हो गया हो। तभी उसने दादा महाराज की ओर देखते हुए कहा था, महाराज मेरी बीवी तारा। तभी दादा महाराज ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था, बहुत जल्द वो तुम्हारे पास आ जाएगी, तो तब तक तुम अपना बाकी का काम खत्म कर लो और इस बात के बारे में पता लगाओ कि तुम्हारे साथ के साथ बावर्ची आखिरकार है कहाँ। जैसे ही दादा महाराज ने ये कहा, अमन ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया था और उसके दादा महाराज गायब होकर सीधा अपनी पेड़ की समाधि में चले गए थे। और पेड़ की समाधि में जाकर उन्हें जल्दी ही काव्या के वहाँ होने का एहसास हो गया था। कैसे आएगी तारा पृथ्वी लोक, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।